Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, मौन में रहना एक साधना है, पर सोच समझकर बोलना ये एक कला है। जिंदगी में अगर हम बिना सोचे समझे कई ऐसी बातें बोल देते हैं जिसका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा बुरा होता है। हमें सोच समझकर बोलना चाहिए और सदा लोगों के लिए सकारात्मक विचार रखने चाहिए, तो आप महसूस करेंगे कि आसपास का जो वातावरण है वो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर अवधीश शर्मा जी। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो भाई जी।
थैंक यू वेरी मच, प्लेजर।
डॉक्टर साहब, हमारी सीरीज चल रही है रिलेशनशिप्स के ऊपर कि रिश्तों में कहाँ मिठास है और कहाँ पे थोड़ा सा कड़वाहट आ गई है, उसे हम आज काफ़ी सीरीज के थ्रू हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, वो होता है एक ऐसा पड़ाव जिंदगी का जब हमको डिसाइड करना होता है कि हम आगे क्या करने वाले हैं। ऐसे ही एक अवस्था की जिसकी बात कर रहे हैं वो है यूथ्स की। यूथ बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भरपूर होता है, साथ ही साथ उनकी ज़िंदगी में उन्हें डिसाइड करना होता है कि वो आगे चल के कौन सा ऐसा कार्य करेंगे जिससे उनका भी नाम हो जाए। ऐसे में अपने यूथ के लिए आपकी क्या राय है?
देखिए, एक्चुअली ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हमें क्या करना है
जी,
लेकिन हमें क्या बनना है और किस स्थिति में रहना है ये बहुत कम लोग सोचते हैं
जी।
और उसी कारण से हम बाहरी रूप से तो जो जो मिल सकता है, जो जो हम ले सकते हैं या जिस मुकाम तक पहुंच सकते हैं उसी के बारे में सोचते रहते हैं
जी।
और उन्हीं कारणों से कई बार अंदर की स्थिति जो है, जो कि स्टेबल होनी चाहिए, वो नहीं रह पाती।
बिल्कुल।
क्योंकि ये एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन से पुल्स हैं। कहीं आपको अपने परिवार से शायद दूर जाने की ज़रूरत पड़े, और उसका मतलब है कि आपको अकेले शायद रहना पड़े। अगर शादी नहीं हुई है तो अकेले रहने का मतलब यह है कि पूरा घर संभालना पड़े, खाने पीने का ध्यान रखना पड़े उस किसी व्यक्ति को जिसने अभी तक ये सब काम किया ही नहीं है।
करेक्ट।
फिर नए लोगों से मिल के उनके साथ काम करना पड़े और उसी में धीरे 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 आगे बढ़ना पड़े। और इस समय पर थोड़ी सी लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी, और हम एज ग्रुप की बात कर रहे हैं 20 से करीबन 35-40 वर्ष की।
हाँ जी।
अर्ली यूथ कहते हैं और लेटर यूथ कहते हैं, लेकिन यूथ इंसिडेंटली हमारे भारतवर्ष में इस समय सबसे बड़ी पॉपुलेशन है।
अच्छा।
करीबन 40% जो हैं वो यंग हैं, यानी 35 साल से कम उम्र के हैं। तो ये चाहे वो गांव में हो चाहे शहरों में हो, पर्पस इस उम्र का है कि आप खुद मुख्तार बन सकें, यानी अपने पैरों पे खड़े हो सकें, काम के जरिए भी, इमोशंस के जरिए भी। आपको बार बार अपने माँ बाप से ना पूछना पड़े
जी।
आपको बार बार किसी भी कठिनाई में किसी और का सहारा ना लेना पड़े। आप अपने आप अपने जीवन को चला पाएं और शायद एक नई शुरुआत कर पाएं मैरिज के साथ, बच्चों के साथ, और अपना नाम जो पहले पेरेंट्स के नाम से जाने जाते थे अब अपने नाम के साथ जाने जाए। तो ये कई डायरेक्शंस हैं जिसमें यूथ पुल होता है। और अगर उसमें कई तरह के प्रेशर्स जो कि बाहर से आने शुरू हो जाते हैं कि आप क्या करते हैं, यू नो, पहला क्वेश्चन ये होता है आपका नाम क्या है, किस परिवार से, आप क्या करते हैं। अब क्या करते हैं में कई बार लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अगर उन्हें लगता है कि पूछने वाला व्यक्ति कंपेयर करेगा या उसकी आंखों में मेरी जो इज्जत है वो इस वजह से होगी कि मैं क्या करता हूँ या शायद कितना कमाता हूँ या मेरी पोजीशन क्या है, तो कई बार उन्हें दिक्कत पैदा होनी शुरू हो जाती है। एक और भी सच्चाई है कि आप जिस काम में अच्छे हैं, जिसके लिए आपने पढ़ा है, शायद आपको उस तरह की जॉब ना मिले। जिस जगह पे मिले उस जगह पे कई तरह के चैलेंजेस हो, आसपास के लोग शायद उतने अच्छे ना हो या वैसा माहौल ना हो जिस माहौल को आप अपने घर में या पीछे जिसे छोड़ के आए हैं उसको एक्सपेक्ट करते हो। 12 घंटे शायद इससे पहले कभी काम किया ही नहीं है। उस दौर में जब आप स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो पढ़ाई का थोड़ी देर के लिए मकसद होता, अब आपको बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक काम करना है और दूसरी चीज़ों को भी करना है। तो ये बड़ा स्वीट एंड सार काइंड ऑफ समय है
जी।
इसमें अगर आपने कोई उपलब्धि पाई है
जी,
तो उसमें बहुत खुशी भी होती है। लेकिन अगर किसी वजह से आपको लगता है कि मैं पिछड़ रहा हूँ, या जो मेरी महत्वाकांक्षाएं थी वो नहीं पूरी हो पा रही, या दूसरों को देखते हैं और उनसे कंपेयर करते हैं, तो कई बार थोड़ा सा गड़बड़ा भी जाते हैं। लेकिन ये एक तरह से सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी है फ्यूचर की।
ओके।
क्योंकि इन 5 से 10 वर्षों में अगर कोई व्यक्ति वो काम कर सकता है जिसमें उसे खुशी मिलती है, वो काम कर सकता है जिससे कि दूसरे उसको अप्रिशिएट करते हैं, या उसमें कॉन्फिडेंस आता है कि मैं जो भी हो जीवन का निर्वाह कर पाऊंगा,
बिल्कुल,
और उसी से साथ जुड़ी चीज़ें कि आपके परिवार वाले, समाज वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं, अगर शादी होनी है तो प्रोस्पेक्टिव ब्राइड या प्रोस्पेक्टिव ग्रूम या उसके परिवार वाले क्या सोचते हैं, इसी समय में एक्चुअली रिलेशनशिप्स के एक्सपेरिमेंट्स भी शुरू होते हैं।
ट्रू।
क्योंकि पहले जो आकर्षण होता है, अब वो आकर्षण कई बार लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में चला जा सकता है।
बिल्कुल।
लेकिन यही समय वो भी है जब कई बार थोड़े बहुत इधर उधर भटक भी सकते हैं। भटक सकते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो उस दौरान में लोगों में कई तरह की मानसिक व्याधियां भी हो सकती हैं। तो ज़रूरी ये होता है कि इस समय को वो व्यक्ति खुद, हो सके तो उसके आसपास वाले, ये देख के चलें कि क्या वो बाय एंड लार्ज अपने जीवन से खुश है, क्या उससे उसके आसपास वाले परिवार वाले या काम वाले या दोस्त रिश्तेदार वो खुश हैं, और क्या एट द एंड ऑफ द डे उसे लगता है कि मेरा जीवन उस रोड पे चल रहा है जिस रोड पे मैं चाहता था
जी।
क्योंकि अगर वो सशक्त नींव है तो आगे की इमारत भी
बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं बन पाएगी। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा देखा गया है कि यूथ जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनके अंदर में काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं। जैसे आपने अभी बताया कि फैमिली को भी संभालना है, करियर भी क्रिएट करना है, अपना अस्तित्व भी बनाना है। ऐसे में कई बार कुछ ऐसे यूथ होते हैं जो मून जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि किस तरह की प्रोफेशन को वो अपनाएं जिससे उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। क्योंकि आज अगर बात करें, कोई भी जनरेशन की अगर हम बात करें, हर जगह पे ये चीज़ तो फिक्स्ड होती है कि जिंदगी में आगे आप कैसे पैसे कमाएंगे, वो अल्टीमेट गोल समझकर आगे बढ़ रहे होते हैं लोग। लेकिन वो कौन सा ऐसा करियर अपनाएं जिससे वो स्टैग्नेंसी क्रिएट कर पाए अपनी लाइफ के अंदर में। तो ऐसे में आपकी क्या राय है कि किस तरह से हम ऐसे सिचुएशंस में अपने आप को आगे बढ़ाकर सही गोल की तरफ आगे बढ़ पाए?
कि कुछ वर्षों में बहुत मेजर बदलाव आए हैं एज फार एज प्रोफेशन इज कंसर्न। पहले ये सोचा जाता था कि आप एक अच्छी जॉब में घुस गए, अब अगर आप क्लर्क से शुरू हुए हैं तो आप सीनियर मैनेजर बन के रिटायर होंगे।
wow.
उसी कंपनी में।
True.
या गवर्नमेंट में आपने एक डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया तो लोग उसी डिपार्टमेंट में चलते रहते थे और 30-35 वर्ष के बाद रिटायरमेंट बेनिफिट्स के साथ रिटायर हो जाते थे। अब वो पीरियड जो है वो सिमटता जा रहा। अब लोगों की आकांक्षाएं आगे बढ़ने की बहुत स्पीड से हो रही हैं। कई बार लोग चाहते हैं कि 10 सालों में किसी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बन जाए, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे। या कई बार ये सोचा जाता है कि मैं 6 महीने यहाँ पे एक्सपीरियंस ले लूँ, उसके बाद दूसरी जॉब में चला जाऊँगा, वहाँ पे प्रमोशन भी होगी, पैसे भी मिलेंगे, फिर एक नई जगह पे चला जाऊँगा। तो वो जो, और ये दोनों तरफ से होता है, कंपनीज की तरफ से भी होता है, काम की तरफ से भी होता है, और जो उनमें जा रहा है काम करने वाला है उनकी तरफ से भी होता है। पहला तो ये कि लॉन्ग टर्म गोल सोचें
जी।
कहीं नहीं लिखा कि आपको 5 साल में अगले 50 साल को जीना है। और अगर आप उस स्पीड से भागेंगे तो कहीं ना कहीं हाफ जरूर जाएंगे।
करेक्ट।
आप अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। सिर्फ यही सोचते रहेंगे कि मुझे किसको कैसे इम्प्रेस करना है ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। काम में जो ठोसता होनी चाहिए एक तो वो नहीं होगी। दूसरा, कई बार जब हम पढ़ते हैं और जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो दोनों में बड़ा फर्क होता है। सिर्फ थ्योरी और प्रैक्टिस में फर्क नहीं है, लेकिन जिस तरह की, और अगर आप मान लीजिए लॉ में देखें, जब तक आप पढ़ रहे हैं अच्छे अच्छे जजमेंट्स हैं, लेकिन जब आप एक्चुअली फील्ड में जाते हैं तो वहाँ के दाव पेच बिल्कुल अलग होते हैं। मेडिसिन में आपने पढ़ा, बड़ा लॉजिकल लगता है, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसमें और कई तरह की प्रॉब्लम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स उभर के आती हैं, सिर्फ मरीज उसकी बीमारी वो नहीं रहती। और ये चीज़ हर जगह पर लागू होती है। तो कई बार उस स्टेज के ऊपर भी खास तौर पे लोग जो हैं परेशान हो जाते हैं, और परेशान होने की वजह से या तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, सिस्टम को बदलना चाहते हैं, या उन्हें लगता है कि ये प्रोफेशन उनका नहीं है। उसका एक बेसिक फॉर्मूला ये है कि पहले तो जो काम आप कर रहे हैं सोच लें कि क्या आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, क्या इससे आपको खुशी मिलती है, और क्या आप स्वतः उस काम को कर पाते हैं। अगर कहीं बोझ है, अगर कहीं शाम को आपको लगता है कि मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, तो आप पूरी जिंदगी उस पर नहीं चल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर ये शुरू में ही लगना शुरू हो जाए तो फिर ज़रूरत है फिर से आंकलन करने की कि आपने जो पढ़ा है, जिस प्रोफेशन के लिए हुए हैं और जिस प्रोफेशन में हैं, क्या वो सही है। अच्छी बात उसमें यह है कि आज के डेट में माइनर चेंजेस करके आपको पूरी की पूरी लाइन नहीं चेंज करनी पड़ती, लेकिन माइनर चेंजेस करके गवर्नमेंट वर्सेस कंपनी, सेल्फ वर्सेस कंपनी, आप एंटरप्रेनर भी बन सकते हैं, आप अपनी नई शुरुआत भी कर सकते हैं। आज के समय में वेंचर कैपिटलिस्ट भी आपकी मदद करने के लिए आते हैं, स्टार्टअप्स कई तरह के हैं, तो वो पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं। प्लस कई बार ये भी देखा गया है कि जब लोग थोड़ी देर तक आगे चलते हैं तो उसमें जो लोगों के साथ उनका व्यवहार है उसमें फंस जाते हैं।
अच्छा,
कि मेरा बॉस कैसा है, मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं उनमें कितना कॉम्पिटिटिवनेस है, कौन किसकी लेग पुलिंग कर रहा है, ऑफिस की पॉलिटिक्स क्या है। और जो मेन मुद्दा होता है, जो काम होता है जिसमें आप अपने को अभिव्यक्त कर सकते हैं, उस पर कम ध्यान हो जाता है। तो उससे अपना ध्यान हटाना चाहिए, वो जो बाकी चीज़ें हैं वो लेस इम्पॉर्टेंट है।
पर ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि वो हमारे बारे में ही बात कर रहे होते हैं। अगर लेग पुलिंग की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सेल्फ एस्टीम को लो करने वाली चीज़ होती है। ऐसे में इन सब चीज़ों को अवॉइड करके कैसे आगे बढ़े, जब तक उन्हें जवाब नहीं देंगे तब तक वो शायद चुप नहीं होंगे, तो ऐसे में क्या किया जाए।
देखिए, शब्द जो हैं वो ऐसा तीर नहीं है कि सीधा चुप जाए। जब हम उन शब्दों को अपने लिए इंटरप्रेट करते हैं तब वो चुपता है। अगर किसी ने आपके बारे में कुछ कहा तो आप अगर रुक के उसके बारे में सोचते हैं और फिर आपको लगता है कि नहीं, ये बात सही नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ, उसने कहा वो उसकी मर्जी, लेकिन जब तक मैं उसको अपने अंदर नहीं लेता तब तक वो मेरे मन का हिस्सा नहीं बन सकता। हम किसी के कहे गए शब्दों को रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो जैसे उसने कहा, एक इमीडिएट रिएक्शन आया क्योंकि अपने आप को हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर
रहे हैं।
लेकिन अगर हम ये देखें कि अगर उसने कहा और उसमें सच्चाई है तो क्या मैं अपने आप को बदल सकता हूँ, क्या मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूँ, क्या मैं इससे सीख सकता हूँ, और उसके लिए किसी से झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने मन के अंदर ही चल रहा। और अगर उसने जो कहा वो बिल्कुल सच नहीं है तो आप ये समझ के कि उसकी प्रॉब्लम है, उसकी इंटरप्रिटेशन है, मुझे इसमें फंसना नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप फंसते हैं, आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं या झगड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो बात एक तो आगे बढ़ जाती है, फिर आप जब उस व्यक्ति को देखेंगे तो उसके बारे में ही सोचते रहेंगे, जो काम है वो पड़ा रह जाएगा। पॉलिटिक्स तब आती है अगर आप अपने काम के प्रति पूरी तरह से या तो सजग नहीं है या अपने में कॉन्फिडेंट नहीं। अगर हैं, हो सकता है कि अगर पॉलिटिक्स बहुत हो आपको वो जगह छोड़नी भी पड़े, तब भी आप किसी और अच्छी जगह में नौकरी पा लेंगे या काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही हिल रहा है, अगर आपके रिलेशनशिप ही हर समय डामाडोल हो रहे हैं, तो आप उसी में फंसे रहेंगे और जो आउटपुट है उस पर बहुत असर पड़ता है। एक्चुअली कुछ शोध हुई हैं जिनमें ये देखा गया है कि करीबन हाफ द टाइम जो ऑफिस में होता है वो काम से रिलेटेड नहीं होता, वो इंटरपर्सनल प्रॉब्लम की वजह से रिलेटेड होता। तो जो एफिशिएंसीज कम होती हैं वो इसलिए नहीं है कि लोग उसके लिए प्रिपेयर नहीं है या ट्रेंड नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि विरोधाभास है। किसी ने कुछ कहा, दूसरे ने उसको सुना, दूसरा उसके बारे में जवाब दिया और हर समय जो था वही चीज़ ऑफिस में घूमती रही, फिर और उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। तो अगर उन रिश्तों को हम जितना हो सके मधुर बनाए रखेंगे तो मैं अपने काम पे भी फोकस कर पाऊंगा और ऑफिस का माहौल भी गलत नहीं होगा।
बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब। जब हम बात करते हैं यूथ की, उनके अंदर में भले बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे होते हैं, चाहे वो जॉब्स में हो, चाहे वो फैमिली में हो, या कोई भी तरीके की नेगेटिविटी उनके आसपास हो, उसे अवॉइड करके अपने जिस पे उन्होंने एक्सपर्टीज अपनाया है उस पर अगर फोकस करके वो अपनी दिशा की तरफ आगे बढ़ेंगे तो वो महसूस करेंगे कि उनके गोल उनसे ज़्यादा दूर नहीं है।
जी
डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमारे ऑडियंस के हैं जो हम आपसे पूछना चाहते हैं।
श्योर
जी।
मेरा नाम हिमांशु शर्मा है, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ मेरा, और मुझे छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, सो मैं क्या करूँ? मेरे पेरेंट्स अगर मुझे कोई चीज़ समझाते हैं या कुछ कहते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है।
मेरा नाम हिमांशु पटेल है और मैं अहमदाबाद से हूँ। मैंने बीकॉम एमकॉम कंप्लीट किया है और अभी मेरा आईएलटीएस की एग्ज़ाम मेरी चल रही है, और मैं मेरा एक ड्रीम है कि मैं सिंगिंग में अपनी लाइफ जमाऊँ, लेकिन मेरे मॉम डैड इसके बारे में कुछ सोचते नहीं है और मुझे सपोर्ट नहीं करते। मेरा ये ड्रीम है कि मैं सिंगिंग में अपनी लाइफ में सेटल करूं, तो मैं अभी बहुत कंफ्यूज में हूं, तो मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए।
डॉक्टर साहब, इनका सवाल कुछ इस प्रकार है, जो आजकल ऑलमोस्ट 80-90% यंगस्टर्स के अंदर देखा गया है कि ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं और उनके अंदर शायद एनर्जी लेवल ज़्यादा होती है, इस वजह से उन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है और शॉर्ट टेम्पर्ड होना ये एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, तो इसका क्या किया जाए? और दूसरा सवाल ये है कि इनके जो पेरेंट्स हैं ये इन्हें मना कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि सिंगिंग में एज अ करियर वो क्रिएट करें, लेकिन उनके पेरेंट्स कर रहे हैं कि नहीं, आप पढ़ाई करो और पढ़ाई करके जॉब करो, दिस इज हैज़ टू बी योर एम। तो ऐसे में इन दोनों सिचुएशंस में हमारा जो यूथ है वो कहीं ना कहीं फंसा गया है, तो क्या किया जाए?
गुस्सा तब आता है जब या तो मैं जो चाहता हूँ वो उस प्रकार से ना हो, या मैं दूसरों को गुस्सा करते देखता हूँ और वो एक्सेप्टेबल चीज़ हो जाती है, या कहीं ना कहीं आप ये देखते हैं कि जिसने गुस्सा किया उसका काम हो गया, या आप दूसरों को गुस्से के द्वारा अपनी चीज़ों को मनवाते देखते हैं, जिसको हम रोल मॉडलिंग कहते हैं। कन्फ्यूजन्स इस समय यूथ के दिमाग में, उनके पेरेंट्स के दिमाग में बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि ये एक विंडो पीरियड है 18-25 साल का, इसमें अगर वो सेटल नहीं हुए तो कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, या अगर कहीं और कुछ रिलेशनशिप गड़बड़ा रही है उसको भी अपने मन में ही रख के चलते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें आमतौर पे लोग ज़्यादा
बात
शेयर नहीं कर पाते, और या कहीं ना कहीं से प्रेशर आ रहा है रोज़ का, मे बी उनके लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है, पेरेंट्स पॉइंट आउट करते हैं, या वो अभी टेक इट ईजी रखने का सोच रहे हैं और पेरेंट्स कहते हैं कि जल्दी करो किसी चीज़ में सेटल होना। तो जब भी प्रेशर्स और उसको सही रूप से व्यक्त ना कर पाना होगा, गुस्सा आएगा। पहली चीज़, रोल मॉडलिंग घर के अंदर कम से कम हम ऐसी कर दें कि गुस्सा आना ज़रूरी नहीं है। सड़क पे हो रहा है, सोसाइटी में हो रहा है, उसका हम ज़्यादा नहीं बदल सकते, अगर सारे ही लोग बदलें तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि एग्रेशन से कभी भी काम हुए नहीं है, एग्रेशन से या तो आप दूसरे को हर्ट करते हैं और फिर वो वापस आपको हट करता है, एक प्रोसेस है जो चलता रह सकता। जो मुद्दा है आपके मन में वो ज़रूर व्यक्त होना चाहिए, लेकिन अगर वो सभ्य भाषा में व्यक्त होगा, अगर वो कामली आप कहेंगे तो उसमें ज़्यादा पावर होगी।
करेक्ट।
गुस्से में तो यही होता है कि एक व्यक्ति अपने आप को बचा रहा है, दूसरा उसे कंट्रोल कर रहा है, तो वही चीज़ रह जाती है जो असली मुद्दा है वो ख़त्म हो जाता है।
करेक्ट।
साथ ही साथ कुछ तरह की टेक्निक्स रिलैक्सेशन की जो कि बहुत ईजी भी हैं और रोज़ की जा सकती हैं, करनी चाहिए। मेडिटेशन उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है, क्योंकि मेडिटेशन में सिर्फ रिलैक्सेशन नहीं होती, मेडिटेशन में आप अपने विचारों को भी देखते हो, आपके मन के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन्हें भी देखते हो, उन्हें भी महसूस करते हो। और अगर आप उस समय में अपने पे थोड़ा फोकस करते हैं तो ये भी पाएंगे कि मेरे गुस्से से दूसरा हर्ट हुआ है, फ़ायदा मुझे नहीं हुआ है। कई बार कुछ बहुत आसान सी चीज़ें हैं लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। पूरी नींद ले लेना, अगर आप पूरा नहीं सोए हैं तो आप ज़्यादा इरिटेबल होंगे।
करेक्ट।
अगर आपने सही पे खाना नहीं खाया टाइम पे तो आप ज़्यादा जल्दी इरिटेबल होंगे। अगर आप 5 चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं और कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही है तो जल्दी गुस्सा आएगा। अगर आप जल्दी में हैं और आपको बीच में कोई टोकता है तो जल्दी गुस्सा आएगा। अगर आपने अपने गोल्स बहुत ज़्यादा सेट कर लिए हैं और आपको लगता है कि उनकी प्राप्ति नहीं हो रही है तो जल्दी गुस्सा आएगा। तो इन चीज़ों को भी रोज़ चेक करें। प्लस अगर हम एक सोच लें मन में, चाहे रोज़ सोच लें कि मेरी आज की स्थिति डावाडोल नहीं होगी, क्योंकि एक्चुअली गुस्सा करने से दूसरे पे तो असर पड़ता ही है, उससे पहले मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता है।
करेक्ट।
मेरी ग्लूकोज लेवल एकदम बढ़ती है, मेरा हार्ट रेट बढ़ता है, मैं अपने अंदर जो सारे के सारे ऐसे चेंजेस हैं फिजियोलॉजिकल जो कि मुझे लॉन्ग टर्म में हर्ट कर सकते हैं उनको महसूस करता हूँ। तो मुझे स्ट्रैटेजी अपनाने की ज़रूरत है कि मैं किस रूप से उस चीज़ को हैंडल कर पाऊँगा। जहाँ तक रही बात कि वो सिंगर बनना चाहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं वो एक ट्रेडिशनल सी जॉब करें, अभी सोसाइटी एक्चुअली इतनी ओपन नहीं हुई है कि जो व्यक्ति जो चाहे उसको कर पाए। और सबसे बड़ी बात उसमें आती है कि हर प्रोफेशन में अपने आप को सस्टेन करने के लिए पैसा भी नहीं है, और कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनमें कि शायद शुरू में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है जो कई बार पेरेंट्स के पास नहीं होता। उसमें मैं कहूँगा दो तरीके हो सकते हैं। एक तो है कि सेफ होके चलें, जो आपने पढ़ा है उसके लिए भी प्रिपेयर करें। अगर कोई जॉब मिल जाती है, सिंगिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप साइड में भी सीख सकते हैं
जी।
और अगर आप आगे बढ़ जाते हैं उसमें, देन यू कैन टेक इट अप एज अ प्रोफेशन। और दूसरा तरीका यह है कि किसी व्यक्ति को जो कि इस चीज़ के बारे में जानता है, कम से कम इवेल्यूएट तो कर लें कि आप कितने अच्छे सिंगर हैं, क्योंकि हो सकता है ये सिर्फ आपके मन में चल रहा है और एक्चुअली एज अ प्रोफेशन उसके चांसेस ज़्यादा नहीं है। तो उसका अगर सही रूप से आंकलन हो पाएगा तभी उस चीज़ को आप आगे लेके जा पाएंगे।
डॉक्टर साहब, आज हमने इतनी सारी बातें सीखी जिसमें मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये लगी कि कोई भी करियर हो जिसमें हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि उसमें पूरी तरीके से आप विशारद हासिल कर लें, तो उसके लिए आपको उसकी तरफ कम्प्लीट डेडिकेशन एंड डिवोशन देने की ज़रूरत है
जी।
बाह्य बातों से बाहर निकल कर अपने एम की तरफ अगर आगे बढ़ेंगे तो वो महसूस करेंगे कि वो कोई भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। Thank you so much, Dr. Sahab. Thank you for coming in this show.
Pleasure. Thanks a lot.
Om Shanti.
Om Shanti.
दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने ये जाना कि किस तरह से जिंदगी में अगर हम कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, एज अ यूथ हमारे अंदर में बहुत सारी होप्स होती हैं, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं कि हमें ये हासिल करना है, हमें वो बनना है, लेकिन ये सब बातों के लिए कहीं ना कहीं फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका फोकस होगा अपने कार्य को लेकर के तो छोटी मोटी जो नेगेटिविटी आसपास है वो आपको नज़र भी नहीं आएगी और फिर आप महसूस करेंगे कि आप अपनी गोल के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।